जय राधा माधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा वृंदावन में कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए रमण रेति वृंदावन में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय कृष्णा, आप लोग पहुंचे हो इस समय रमन रेती, रमन रेती जहाँ की भगवान उनके भाई ने अनेक दिव्य लीलाएं प्रकट की थी। और आप शायद रास्ते में कहाँ रुके थे? भगवान का सफर बंधन, भगवान की अनेक लीलाएं हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चामे कर्म, मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही देवी है। भौतिकवादी व्यक्ति तो भगवान की लीलाओं को में सुनते हैं तो कहते हैं ये तो कल्पना है, माइथोलॉजी, दिस इज इमेजिनेशन। पर जो भक्त हैं वो जानते हैं भगवान की अनेक लीलाएं हैं, असीम लीलाएं हैं। कैसे आप समन्नगार में थे, वहां वो प्रसिद्ध लीला थी, कौन सी? यशोदा माता ने कहा क्या तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं, मेरे भाई उनके मित्रों ने झूठी शिकायत लगाई, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोल के दिखा देता हूँ, खुद ही देखो मैंने मिट्टी खाई है या नहीं। और जब माँ ने अपना मुंह खोला माँ ने क्या देखा? पूरे विश्व का भगवान। आज जब मुंह खोलते हो डॉक्टर के सामने उन्हें क्या देख रहा? और यशोदा माता ने पूरे विश्व का दर्शन प्राप्त किया सारे देवताओं का। तो मोरे बड़ी व्यक्ति को अगर आप ये कहोगे तो कहेगा ये कैसे संभव है, तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। चिंतिया इसी प्रकार भगवान के अनेक लीलाएं हैं। आप उपर बंधन का दर्शन प्राप्त करके सरकल प्राप्त कर रहा हूँ उपर बंधन का दर्शन, वहाँ कौन सी लीला जानते हो? भगवान को उखर बंधन, बंधन मतलब बांधना, उखर मोड़कर। तो यशोदा माता ने क्यों भगवान को बांधा वहां? तो बकायदा शिकायत आते रहती थी, आपका बेटा हमारे घर में आकर क्या कर रहा है? मक्खन चुरा रहा। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है क्या? मक्खन चोर। अगर हम आनंद को बोले आनंद चोर, क्या आप मान कर रहे हो मुझे चोर बुला रहे हो? भगवान का हम चोर बुलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान मक्खन चुराते थे तो कभी किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं। एक समय लॉस एंजलिस में हमारे भक्त किसके घर में जाकर रोज फूल चुराते थे भगवान रुक्मी द्वारका देश के। एक दिन वो पकड़े गए तो प्रभुपाद जी की तरफ सूचना मिली, तो प्रभुपाद ने कहा अगर चुरा रहा है तो कृष्ण जैसे चुराओ, कभी पकड़े नहीं जाओगे, नहीं तो कब चुराओ बात। तो प्रभा का संदेश ही नहीं था कि चुराओ, उनका संदेश था चुराओ मत, पकड़े जाओगे। भगवान को कोई कभी पकड़ नहीं पाया। तो पड़ोस की गोपियां हैं वहां से शिकायत करती थी, आपका बेटा हमारे घर में आकर वतन चुराता है। तो यशोदा माता कहती थी तो और ऊंचाई पर छुपा लो, अंधेरे में भी पहुंच जाते हो वहां। जो गहने उन्होंने पहने हैं उनसे इतना प्रकाश प्रकट होता है कि अंधेरे में हमें पहचान लेते हैं कहाँ है मक्खन। तो यशोदा माता कई बार कहती थी ठीक है तुम्हें गहने निकाल देती हूँ, वो पहचान नहीं सकेंगे अंधेरे में मक्खन। तो गोपियों का इतना स्नेह था भगवान के प्रति, वो क्या कहती थी नहीं नहीं मत चुराओ, गहने मत निकालो, वो खूबसूरत दिखते हैं इसके साथ। एक दिन भगवान एक गोपी के घर में एक दिन भगवान एक गोपी के घर में गए मक्खन चुराने। वो गोपी गई थी स्नान करने के लिए, तो गोपी जल्दी से लौट आई, उसने भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया चोरी कर दिया। यशोदा माता हमेशा कहती है प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, मेरा बेटा चुराता है, और प्रमाण मिल गया और मैंने नंगे हाथ पकड़ लिया इस बालक को मक्खन चुराकर। अपने दाएं हाथ से उसे भगवान के बाएं हाथ को पकड़ा, वो घसीट कर ले जा रही थी यशोदा माता के पास, ये देखो प्रमाण। भगवान ने अपने दाएं हाथ में उस गोपी के बेटे को पकड़ लिया था। तो गोपी घसीट कर ले जा रही थी भगवान को दाएं हाथ से पकड़कर, उसके दाएं हाथ से भगवान के बाएं हाथ को पकड़ा था। भगवान ने अपने दाएं हाथ से गोपी के बेटे के बाएं हाथ को पकड़ा था। भगवान वो इतने जोर से ले जा रही थी भगवान को यशोदा माता के पास, भगवान ने बड़े होशियारी से अपना बाएं हाथ निकाल लिया उनके दाएं हाथ से और गोपी के बेटे के बाएं हाथ को अंदर पकड़ा दिया। तो उस गोपी को पता नहीं लगा क्या किया। तो गोपी यशोदा माता के पास पहुंची, कहने लगी तुम हमेशा कहते हो प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, ये देखो प्रमाण, मां बेटा को पकड़ा नंगे हाथ मक्खन चुरा दे। तो यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा तो अंदर कमरे में मक्खन खा, मेरा बेटा थोड़ी बोले तुम्हारा बेटा। ये गोपी ने देखा ध्यान से, ये तो सच है, वो तो उसका बेटा। तो इसी इस प्रकार मां को कभी कोई पकड़ नहीं पाया मक्खन चुरा। तो यशोदा माता के मन में ये भाव कई बार आता था कि शायद पड़ोस की गोपियों के गोपियों के गोपियों के घर में ज्यादा अच्छा मक्खन मिल रहा है, क्यों वो सोचे कि शायद ये सच है कि पड़ोस की गोपियों के घर में ज्यादा टेस्टी मक्खन। तो एक दिन दिवाली के दिन यशोदा माता मक्खन मथे थे और उन्होंने गीत बनाया था। गीत में क्या रचना थी, भगवान की अनेक लीलाओं को भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। कई प्रसिद्ध असुर जो कंस ने भेजे थे भगवान का वध करने के लिए, तो क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, किसका वध हुआ, असुरों का। और ब्रजवासी थे वो सोचने लगे शिया जी लड़का देवता तो नहीं है, नारायण की खास कृपा है। विष्णु माता ने एक गीत बनाया था, उस गीत में उन रचना का वर्णन था, विष्णु के द्वारा भगवान ने अनेक असुरों का वध किया था और अपने हाथ से मुसल कर लिया। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव, जब आप कोई कार्य करते हो हमारा भाव होना चाहिए, हम इस कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और मन द्वारा क्या, यही भाव, और वाणी द्वारा हमें गीत बनाने की आवश्यकता नहीं, हम कौन सा गीत का उच्चारण कर सकते हैं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, दक्षिण भारत की यात्रा के समय रामनंदन रॉय को मिले बदावे के तट पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने रामनंदन रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। यही प्रश्न ये था, हमें कौन सा गीत सदा गाना चाहिए, रामनंदन रॉय ने कहा हमें वो गीत गाना चाहिए जिसके द्वारा परम भगवान राधा रानी का गुणगान हो, या हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
जो आप कार्य कर रहे हो आपका भाव होना चाहिए भगवान की खुशी, और वाणी द्वारा भाव होता है उच्चारण। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे और अनेक भक्त जुड़े हुए थे सेवा में कार्य कर रहे थे, और वाणी द्वारा भगवान का गुणगान। तो यशोदा माता के मन में ये भाव था, शायद उसके गोपियों के घर में ज्यादा अच्छा मक्खन है। और जानते हो कितनी गायें थी नंद महाराज के पास, औलाद अंदाजा लगाओ कितना बड़ा गौशाला होगा, 9 लाख गाय। तो 9 लाख गाय में कई स्पेशल गाय थी, बोले स्पेशल क्या मतलब, मतलब कि कोई 100-200 गाय थी जिनमें दूध निकलता था ना केवल भगवान की खुशी के लिए, और दूध सुगंधित दूध निकलता था। अरे आज आपने सुगंधित दूध जो आपको चाहिए ऊपर से फ्लेवर जोड़ना पड़ता है, तो उन्हें फ्लेवर घास खिलाया जाता था फ्लेवर दूध। तो यशोदा माता ने जब देखा उनके बेटे ने मटका तोड़ दिया है, मक्खन है सब जगह, और भगवान मक्खन से क्या कर रहे थे, किसको मान रहे बांट रहे थे, कई बार सुधा माता कहती थी तुम ही बंदर हो, हमेशा बंदरों को मक्खन बांटते हो। भगवान कहते थे ठीक है मैं बंदरों के साथ रहने चले जाऊंगा। माता कहती थी नहीं बंदरों के साथ रहने मान जाओ। तो जब माता ने देखा कि बेटे ने क्या शरारत की है, तो छड़ी के साथ भागी किसके पीछे, भगवान के पीछे, और पकड़ लिया। वैसे भगवत में कहा गया है बड़े बड़े योगी हजारों सालों के प्रयास से भी भगवान को नहीं पकड़ सकते, और जब पकड़ा माता ने देखा कि बेटा छड़ी को देखकर घबरा रहा है। तो माता ने छड़ी को फेंका, तो माता ने कहा, सोचा इसको सजा तो देनी चाहिए, बहुत शरारती हो गया है। पड़ोसी गोपियां शिकायत कर रही हैं। माता ने क्या निर्णय किया, क्या निर्णय किया, उसको मैं बांध दे दूं। छोटे बच्चे को बांधना तो कठिन कार्य है, 3 साल 4 महीने भगवान की आयु छोटे बच्चे को बांधना बड़ा सरल। माता ने एक रस्सी ली, एक रस्सी कितनी बड़ी निकली, बड़ी निकली या छोटी निकली, कितनी है? तो दूसरी रस्सी बांधी, तीसरी चौथी पांचवी छठी सारी जितनी रस्सियां थी ब्रज में सबको जोड़ दिया। क्या परिणाम था? तो पड़ोस की गोपियां हैं तो भगवान की लीला देख रही थी और वो हंस रही थी, देखो इसने माता छोटे बेटे को भी बांध दिया। और भगवान ने देखा कि मां के चेहरे से पसीना निकल रहा है, जो फूल थे माता के सिर में वो भी निकल गया। एक रूप से माता शर्मिंदा हो रही थी कि मैं बेटे को बांध नहीं पाया। तो पड़ोसी गोपियों को कह रही थी, हमने जब शिकायत की यशोदा माता से, इतना बेटा इतना शरारती है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब जब माता को खुद सबक सीखा कि मटकी तोड़ दी थी बेटे ने, हाँ माता बांधना चाहती है। तो दो उंगली छोड़े होने का क्या अर्थ है? हमारे आचार्यों ने इस विषय पर हमें समझाया है, एक उंगली के द्वारा संदेश है, आपको प्रयास करना पड़ेगा अगर आप भगवान को समझना चाहते हो। सच बात है, आप भगवान को समझना चाहते हो तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रभु जी कहते थे इंग्लिश में, यदि आई टू सी गॉड, तो प्रयास करने का अर्थ क्या है? भगवान की शिक्षा का पालन करना। उनकी शिक्षा का पालन करेंगे जैसे इस कलयुग में खड़े दो से निरे राज मार्ग, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है वो? हरे राम हरे राम हरे राम एवं केवलम रमण सेवन सेवन सेवा हरे का नाम हरे का नाम हरे राम। कलयुग में हम अपराधों से रहे, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, फिर भगवान की कृपा से मैं क्या प्राप्त होगा? मैं दर्शन प्राप्त होगा। तो प्रयास करें बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप भक्ति में, अभी जैसे आपने ब्रज मंडल परिक्रम किया, काफी परिश्रम का कार्य है, और आप में से है कहते लगभग 90% भक्त परिक्रम में रहे हुए, काफी मेहनत की, प्रयास किया। क्यों? आप चाहते तपस्या करोगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान की लीलाओं के विषय में सुना, हमने प्रयास किया, चाहे ब्रजमंडल परिक्रम हो, नवोदय परिक्रम हो, इन परिक्रमों के द्वारा आपको साधु संगत प्राप्त होती है, भगवान की अनेक लीलाओं को सुनने का मौका मिलता है, जिसके द्वारा अश्वर्य हृदय अश्वर्य बनता है। तो भगवान ने देखा माता इतना प्रयास कर रही है, तो भगवान ने हमें बांध दिया और भगवान को बांध दिया था। साथ में भगवान को याद आया कि मेरा जो प्रिय भक्त है नारद मुनि, उसने एक वर दिया था, किसे? मैंने गोया मुनि ने, ये धामीला का दूसरा भाग है। क्या क्यों वर दिया था? गोया मुनि ने किसके पुत्र थे? वे कौन है? वेदों के खजांची, बहुत धनी व्यक्ति हैं आप, सबसे ज्यादा धनी आप समाज में ये भी देखते हो कि धनी खानदान के बच्चे खराब भी हो जाते हैं, लेकिन बिगड़ ये भी बिगड़ गए थे, मानसी गंगा में चले गए नेतृत्व के लिए, गंगा में हम जाते हैं पवित्र बनाने के लिए, नेतृत्व के लिए नहीं। तो जन्नाथ मणि माए जब भी उन्होंने हमें छुट्टी तो नहीं ढाका, जन्नाथ मणि ने सोचा कि इन पर खास कृपा की जाए, उनको श्राप दिया तुम क्या बन जाओगे, कहा नंदनाथ के आंगन में, अगर आपको ये श्राप दिया जाए पेड़ बन जाओगे नंदनाथ के आंगन में तो आप स्वीकार करोगे? हमारे वृंदावन मंदिर में कमाल का पेड़ है, तो जब ये मंदिर बन रहा था बाबा जी ने स्पर्श कहा डोंट टच द ट्री, पेड़ के ना भागे जा रही है, हर आरती में आता है, हर दिन कीर्तन सुनता है कि नहीं, आप एक आरती में आते हो सोचते हो दिन की हाजिरी लगा दी, हर आरती में आता 24 घंटे हैं नाम पर ना भागे जाए, इन्हें बना दिया पेड़ यमराजन पेड़, उस साथ में एक श्राप दिया क्या, साथ में एक वर दिया जीवन में 100 वर्षों के पश्चात क्या होगा, तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान ने उखल को दो पेड़ों के बीच में रखा बड़े आसानी से खींचा, क्या गिरे दो पेड़, दो पेड़ों से क्या निकले दो कुरे और दो कुत्तों, उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान का नारद मुनि का गुणगान किया, उन्होंने कहा कि नारद मुनि की कृपा से आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, और उन्होंने ये स्तुति में कहा कि अब से हमारे वाणी सदा आपका गुणगान करे, हमारे नेत्र सदा भी भक्तों का दर्शन प्राप्त करे। तो जब ये पेड़ गिरे थे यशोदा माता उस समय रसोई में थी, यशोदा माता ने जब इतनी भारी आवाज सुनी पेड़ों को गिरते हुए तो वो घबरा कर बाहर भागी, देखा तो बड़े पेड़ और बिल्कुल पेड़ के निकट उनका बेटा, तो वो पूछने लगे ये पेड़ कैसे गिरे, और उनसे ग्वालों ने कहा पेड़ आपके बेटे ने गिरा है, और ऐसे में माता कहने लगे मेरा बेटा वो कैसे इन पेड़ों को गिरा सकता है, वो तो इतना छोटा है उसमें इतनी ताकत कहाँ है, जरूर मेरे पति ने गिराया, तो योग माया शक्ति द्वारा वो पहचान नहीं सकी कि भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, और फिर नंद महाराज ने जब देखा कि उनके बेटा बंधा हुआ है तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, चैतन्य चतुर्विध में कहा गया है जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं अपने आप को संतुष्ट बनाने के लिए, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं के विषय में सुनकर क्या होगा परिणाम, अपने आदि जीवन आगे बढ़े, हमें कृष्ण कथा में रुचि देनी चाहिए और कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए। हम भक्तों में एक बड़ी कमी है क्या, हमारी ज्यादा रुचि है प्रजलता में, सच बात ठीक है, रुचि होनी चाहिए कृष्ण कथा, तो ये ब्रजमंडल परिक्रम के द्वारा आप लगभग पिछले एक महीने से रोज कृष्ण कथा सुनते आ रहे हैं। ये कृष्ण कथा सुनने से आध्यात्मिक जीवन जो है ज्यादा मजबूत बनेगा। श्रवण ये है इस कलयुग का उपाय, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों को सुनना। तो जैसे आप जानते हो हमारे इस्कॉन संस्था के भक्त भगवान के प्रचार में भी रुचि लेते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं, कौन सा भक्त है जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है? कौन कौन? भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? बांटना। तो आप ऐसे कितने भक्त हो जिन्होंने पिछले साल या उसे पिछले साल ग्रंथों को बांटा है? बात सब नहीं, मैंने सोचा सब हाथ हो गया। तो लगता है कि आप लोग प्रचार की महिमा इतने परिचित नहीं हो। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान का प्रचार करे वो क्या बन जाता है? सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है भक्त में क्या होना चाहिए, दया की भावना। तीसरे स्कंद में देवहूति ने पूछा साधु के क्या लक्षण है, तो फिर अजय ने क्या कहा, प्रतीक्षा करुणी कहा, सहनशील और दया की भावना। दया की भावना का अर्थ है ये भावना कि हमें भगवान का संदेश देना है, सबको जोड़ना है भगवान के साथ। हरिदास ठाकुर जगदलपुरी में चैतन्य महाप्रभु रोज उनके स्थान में आते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये बताओ इन यामना का उद्धार कैसे होगा, मैं अधिक चिंता में हूँ। और हरिदास ने कहा, अपराधों से रहे भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, इसके द्वारा उनका उद्धार होगा। तो हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया है, और भारती सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को ज्यादा उन्हें क्या दे दिया था, उन्होंने एक निधर्म की तस्वीर खींची और कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और ऐसे वाले करना है बेहद मृदंग। सारे मृदंग के बाद थोड़ी दूर तक जा सकती है, वही ग्रंथ आप बांटोगे एक स्थान में उसका अध्ययन हो सकता है हजारों मिनट दूर। मैं जानता हूँ घटना है, ना किसी ने एक देश में ग्रंथ खरीदा और उसका अध्ययन हुआ, कहाँ हजारों मिनट दूर। एक समय हमारे भक्त अफ्रीका के एक देश में प्रचार करने गए और उन्हें भक्त मिले। भक्तों ने कहा, हमें पता है कि तुम्हारा क्या सिद्धांत है। उन्होंने कहा, कैसे, हमने तुम्हारे ग्रंथ पढ़े। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के भीतर की सेवा पर बहुत बल दिया। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव हैं पया दुखा दुखी होते हैं जब देखते हैं लोग भगवान के शिष्य से दूर जा रहे हैं, तो ये नहीं सोचते सर लोगों में नरक में जा रहे थे हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं, ये सोचते हैं कैसे इनका उद्धार किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों की सेवा पर बल दिया। ठाकुर भक्ति उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1896 में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, जो कि उन्होंने पश्चिम देशों में भेजा था, वही सारा प्रभुपाद जी पकड़ हुए थे संसार में। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के मिशन की सेवा पर बल दिया। केवल एक ही माध्यम, एक ही कारण कभी नहीं उभरा। देखिए प्रभुपाद जी के जीवन को 40 वर्ष के साथ लगभग 70 साल की आयु में वृंदावन छोड़कर प्रभुपाद जी कहां गए, किस कारण? घूमने के लिए, पशुओं का उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कैसे पशुओं का उद्धार हो। गुरु का आदेश था तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, सब सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सेवा, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, सबका उद्धार हो। आप भक्तों से ये निवेदन है, आप सब जुड़िए इस सेवा में। आप सब जो भारत में रहते हैं, भारत में इस समय इस्कॉन के 120 से अधिक मंदिर है, तो आप सब किसी न किसी मंदिर के साथ जुड़े हुए हो। बॉम्बे के साथ, बॉम्बे मीरा रोड के साथ कितने लोग जुड़े हैं, और मायापुर के साथ, और दक्षिण भारत के साथ, सब जुड़े हैं किसी न किसी। तो आप सब जुड़े हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जब इन ग्रंथों का वेतन होगा हमेशा जीवित रहूंगा। जब आप प्रचार करते हो, कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, जब लोग खरीदते हैं ग्रंथ, वहां उत्साह बढ़ जाता है, जब लोग नहीं खरीदते तो उत्साह कम हो जाता है। अरे क्या कहना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब आप ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़ोगे सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं हमें चाहिए ग्रंथ ले, नहीं नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए। जब आप प्रचार करने जाओगे, मनुष्य नाम समझते लाखों में एक व्यक्ति रुचि ले। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास शाह को, अनित्यानंद को घर घर जाओ और लोगों को संदेश हो क्या, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, ये शिक्षा को अपनाओ। उनके आदेश के अनुसार उन्होंने किया। कई स्थानों में लोगों ने उनका स्वागत किया, कहा कि संत आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, और कई स्थानों में लोगों ने उनकी निंदा की, कहा ये तो चोर हैं, जासूस हैं, संत सन्यासी के कपड़ों में। और जो भी कई ने दरवाजा मैंने खोला, कहा कि हमने जब प्रयास किया आपके संतों का दर्शन देने के लिए, हमने आने मिल गया। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हरिदास और इतना ने प्रचार किया, इन्हीं के सबने उनका स्वागत किया, किसी ने किया कहीं ने विरोध नहीं किया। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे ये थोड़ी कि हर व्यक्ति जुड़ गया, चैतन्य महाप्रभु ने अपना संप्रदाय आंदोलन आरम्भ किया, कहीं ने उसका विरोध किया है कि नहीं? तो जब आप प्रचार करने जाते हो ये मत सोचिए अरे लोग ग्रंथ लेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, नहीं नहीं दुर्घ घटेगा। आप प्रयास कर रहे हो इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। आप सबसे निवेदन है जुड़िए ग्रंथों के वचन की सेवा में। मिलोगे ईसा आनंद, कितने भाग जाओगे ज्ञान संघ वेतन की सेवा में, सब सबको कृपा चाहिए या नहीं? आप सोचोगे हमने तो बैंक मंडल कर लिया, आप तो पूरा जिंदगी का कोटा मिल गया, कृपा का कोटा मिल गया, और कृपा चाहिए या नहीं? भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप सब जुड़िए इसमें संघ की सेवा में, और आज अगर आप भारत में देख रहे हो भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, जैसे वृंदावन में 10,000 भक्त आए थे उस सब के लिए, तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। बाबा जी के ग्रंथ में अनुवाद 90 से अधिक भाषा में हो गया है, आप सब पढ़िए इन ग्रंथों में, केवल हमें बांटना ही नहीं पढ़ना भी है। आप में से कितने भक्तों के पास भगवद गीता या रूप किसी न किसी भाषा में है? सबके पास नहीं है भगवद गीता या रूप, चाहे बंगला हो, तमिल हो, हिंदी हो, किन किन के पास है भगवद गीता या रूप? सबके पास है। अगला प्रश्न, कितने बार भगवद गीता को रोज पढ़ते हो? है सबके पास, पढ़ते हैं सिर्फ 20% लोग। तो हमें ग्रंथों को बांटना भी है और पढ़ना भी है। भगवद गीता रोज पढ़ना चाहिए, एक श्लोक दो श्लोक पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञानता दूर होगी। तो ये निर्णय कीजिएगा, हमें गीता को पढ़ना भी है और बांटना भी है, तुम सब करोगे आएंगे। सुनिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। कितने भक्त जो हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा में आते हैं, ओके अभी टाइम हो गया जाने का, हरे कृष्ण।